ഹരി കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലെക്ചർ നമ്പർ 6. അത്യന്ത ഹി സൗഭാഗ്യ ഹൈ ഹം സബ്കാ കി ഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കെ മാധ്യമ സേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കി ലീലാഓ കാ ശ്രവൺ കർ രഹേ ഹൈ. കൽ ഹംനേ മഹാപ്രഭു കി ബാല ലീലാഓ കെ വിഷയ മേ അധിക പഠാ, ജിൻമേ ഉൻകി അദ്ഭുത ബാല ലീലാ, ജിസ്മേ കഭി വോ ബ്രഹ്മണോ കോ ജോ നാം നിഹാത് ബ്രഹ്മണ ഹോതേ തേ ഉൻകോ തംഗ് കർതേ തേ, തോ കഭി वो सुकुमारियां जो वहां पर आती थी शिव जी की पूजा करने के लिए, अपने लिए अच्छा पति प्राप्त करने के लिए उनके साथ हास्य विनोद करते, तो एक बार उन्होंने केशव कश्मीरी को हराया और कभी काजी को ये महामंत्र नाबंद करने के लिए सबक सिखाया. हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु भागवत धर्म और संकीर्तन आंदोलन को स्टार्ट किया उन्होंने, और कोई भी जो इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा होता था महाप्रभु उनको जरूर प्रताड़ित करते थे. और उनके मामा जो कि चापल और गोपाल नामक दो ब्राह्मण थे, उनको भी जब वो भी महाप्रभु के आंदोलन में उनको डिस्टर्ब कर रहे थे उनके प्रचार कार्यों में, तो उनको भी दंडवश महाप्रभु ने उनको दंड दिया था, जिसकी वजह से उनको कोढ़ हो गया था. किंतु जब उन्होंने पश्चाताप किया तो भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया. चैतन्य महाप्रभु भगवान के सबसे ज्यादा दयावान अवतार है, जिनको महावदन्याय कहा जाता है. जब नित्यानंदा प्रभु पे जगाई और मधाई ने प्रहार किया, तो नित्यानंदा प्रभु की कृपा से उनके कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी क्षमा कर दिया. वास्तव में भक्तों, चैतन्य महाप्रभु समस्त अपराधियों को, समस्त पापियों को क्षमा कर देते हैं. जो उनके प्रति अगर कोई अपराध करता है तो उनको भी क्षमा कर देते हैं. लेकिन यदि कोई भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करते तो ये चैतन्य महाप्रभु से सहन नहीं होता. लेकिन ये नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा है कि उन्होंने जगाई और मदाई जैसे दुष्टों को भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा दिलाई. ये एक वैष्णव का स्वभाव है कि चाहे कोई भी उसके एक वैष्णव के अगर शरण में हम चले जाते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है. ये चैतन्य महाप्रभु का विशिष्ट दया भाव है. इस युग में कोई भी ये नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है. किसी के लिए ऐसा कह पाना सर्वथा असंभव है. हम सब अपराधों से घिरे हुए हैं. ये कलयुग कलह का युग है और इसमें सब अपराधों से घिरे हुए हैं. लेकिन भगवान चैतन्य सभी प्रकार के पापी पुरुषों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पाप पूर्ण आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करेंगे. चैतन्य महाप्रभु की ये प्रतिज्ञा है कि अगर कोई अपने प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेता है और ये प्रण करता है कि आइंदा मैं नहीं करूंगा, तो पिछले वाले अपराधों से उनको क्षमा कर दिया जाता है. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं कि इस कलयुग में प्रायः सारे लोग जगाई तथा मदाई की तरह के हैं. यदि वे अपने कुकृतियों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के पश्चात उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है. भगवान ने श्रील रूप गोस्वामी के को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें इन निषेध आत्म नियमों का वर्णन है. यानी कि जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे चार नियम का पालन करना, मांस न खाना, शराब न पीना, जुआ न खेलना और अवैध संग न करना, और इसके अतिरिक्त भी जो चीजें श्रील रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने शिक्षा दी है उसमें बहुत सारी चीजें निषेध आत्मिक है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए. तो अगर हम इन सारे नियमों का पालन करेंगे तो हमें अवश्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी. तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, उससे पहले मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागजातम् सहकणरघुनाथितं तं सजीवम् सात्वैकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहकणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीककान्द श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मतं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आज हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में अधिक लीलाएं पढ़ेंगे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में भक्त के अवतार भक्त के रूप में अवतार लेकर आए थे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है। अब भगवान के अवतार हैं तो उनको चमत्कार दिखाने चाहिए लेकिन वो एकदम सिंपल भक्त की तरह उन्होंने अपना जीवन जिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, शिवाज ठाकुर जी के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा में था तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य दिखाया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि तुम क्या खाना चाहते हो। सारे भक्त बैठे हुए थे तो बोला आप लोगों को क्या खाना। जब उन्होंने आम खाने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने आम की एक गुठली मांगी। यद्यपि वह फल उस ऋतु में बाहर का था, यानी कि उस वो मौसम नहीं था आम का, ऋतु के बाहर का था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने उसे शिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक लता प्रकट हो गई। लता ने अविलंब पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जो पक्के फलों के भाव से झुक गया और भक्तगण उन्हें खाने लगे। यह वृक्ष श्रीवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इससे इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते रहे। ये कितनी आश्चर्यजनक घटना है कि उसी टाइम पर भक्तों ने बोला कि हमें आम खाने हैं और महाप्रभु ने गुठली डाली और उसी टाइम पर वृक्ष बन गया, यानी कि वो सीजन भी नहीं था मैंगोज का और उस टाइम पर उसमें से फौरन से वृक्ष बन गया और फौरन से बहुत सारे आम निकल गए और चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों की इच्छा को पूरा किया और ये वृक्ष शिवाज ठाकुर के आंगन में कंटिन्यूस लगा रहता था और भक्त इससे फल प्राप्त करते थे। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था, उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक सम्मान था और भगवान के प्रति उन गोपियों की अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। यानी कि वो कीर्तन करते ना, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसे करते करते वो जोर जोर से गोपियों का नाम लेने लगे, गोपी गोपी इस तरह। तो उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे, उन्हें देखने आए और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते हुए देखा तो वे चकित हो गए। उन्होंने मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं, इनके ऐसे भगवान के नाम की बदली में वो गोपियों का नाम क्यों ले रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि कृष्ण का नाम कीर्तन करें। इस प्रकार भाव आवेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया और भगा दिया। ये विद्यार्थी महाप्रभु की ही अवस्था के थे, अतएव वे भ्रमवश उन्हें अपने समक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह निश्चय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी तरह डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना के सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गईं। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि आपको भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, गोपियों के नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हो आप, और फिर इस तरह चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भाव आवेश में थे तो उनको डांट के भगा दिया। लेकिन दूसरे लोग है ना, फिर महाप्रभु से द्वेष की तरह बातें करने लगे कि ये देखो कैसे गोपियों के लिए मतलब कीर्तन कर रहा है, गोपियों का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ये डोंगी है, इस तरह की द्वेषपूर्ण बातें फैल गई। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्रोफेसर, कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवत भक्ति के विरोधी होते हैं। अतएव उन्होंने विचार किया कि मेरा ध्येय होगा इस युग की सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना, किंतु वे यदि मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते रहेंगे तो इससे उन्हें लाभ नहीं प्राप्त होगा। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति का जीवन बिताना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के सन्यास इतना मतलब छोटी आयु में 24 साल की उम्र में सन्यास ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु क्योंकि पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए आए थे, तो उन्होंने सोचा कि यदि मेरे प्रति ही ये लोग अपराध करेंगे तो फिर तो उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कभी भाव आवेश में आ जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, बोला अब क्या करना है इन सब, क्योंकि इनकी मनोवृत्ति ऐसी है कि वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि मेरी शरण में आ जाएंगे तो फिर भगवान को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मेरी शरण में वो तब तक नहीं आएंगे, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो मेरे प्रति सम्मान प्रकट कर सके। तो चैतन्य महाप्रभु ने जन सामान्य के कल्याण के लिए 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, क्योंकि जो लोग होते ना अगर वो किसी और का नहीं भी सम्मान करते हैं तो भी सन्यासी का, यानी कि भक्तों का इतना ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी सन्यासी का सम्मान वो अवश्य करते हैं, इसलिए उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई नहीं थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी संन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के बहुत पक्ष में ना थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी संन्यास जीवन की विधि विधानों का पालन करने में सक्षम है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को संन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय करना पड़ा, जिससे सामान्य लोग उनका सम्मान कर सके, क्योंकि सन्यासी समस्त वर्णों तथा आश्रमों का स्वामी माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्य बद्ध है। सिर्फ ये सोचकर कि अगर वो मेरा मैं सन्यासी बन जाऊंगा और मेरा आदर करेंगे तो उनका कल्याण होगा, इसी चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया था। जब वे सन्यास ग्रहण करने की सोच रहे थे तो एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी जो कटवा यानी बंगला में निवासी थे, बंगला बंगाल में रहते थे, उसका नाम था केशव भारती, नवदीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। अब जब वे उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी, यानी कि ये तो बस फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि उनको संन्यास ग्रहण करने के लिए किसी न किसी से ना दीक्षा लेनी थी, संन्यास दीक्षा, तो उन्होंने इसे उनसे ये निवेदन किया कि आप मुझे संन्यास दीक्षा दो। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है, यदि भी महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र थे तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के ना थे लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए केशव भारती से संन्यास ले लिया। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवदीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से हुआ है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत ही सुंदर रूप से चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने का ये घटना का वर्णन किया। जब चैतन्य महाप्रभु कटवा गए थे केशव भारती के यहाँ पर संन्यास दीक्षा लेने के लिए, तो केशव भारती उनको देखकर इतना मोहित हो गए, इतनी सुंदर चैतन्य महाप्रभु, उनके घने घने काले घुंघराले बाल थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे जब विनय किया कि आप मुझे संन्यास दो, तो केशव भारती ने बोला पागल हो गया हूँ मैं, लोग क्या कहेंगे, 24 साल की उम्र में कितने, आप अभी इतने छोटे हो, इस उम्र में कभी किसी को संन्यास दिया जाता है, मैं तुम्हें नहीं लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि नहीं, मुझे संन्यास जरूर ग्रहण करना है, मुझे लोगों के पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए मैंने अवतार लिया है, अब मुझे ये फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है, मुझे संन्यास ग्रहण करना है ताकि लोगों के असम्मान भाव से मेरी शरण में आएंगे तो उनका उद्धार होगा। तो बड़े ही जो वहाँ के लोग थे वो सब देख रहे थे कि इतना सुंदर, इतना सुकोमल व्यक्ति जो कि चैतन्य महाप्रभु इतने इतने कोमल शरीर के थे और इतने सुंदर थे, उनके बड़े गुंगराल बाल थे और उसको जब कटिंग किया जा रहा था संन्यास लेने के लिए, तो फिर सबको सबको रोना आ रहा था कि ये क्या विधाता क्या कर रहे हो आप, इतने छोटे से आयु में इसको संन्यास दे रहे हो। सब केशव भारती को भी सब बोल रहे थे कि केशव भारती क्या अक्कल नहीं हुई है इसके पास कि ये कोई उम्र होती संन्यास देने की। तो बहुत ही रोमांचक ये घटना उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य भागवत में बताई है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्त पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपक उपदेशक बन गए। अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और केवल भागवतम धर्म का उपदेश करने लगे। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि इससे उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आती हैं, तो उन्होंने पतित आत्माओं के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान दे दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्री अद्वैत प्रभु तथा श्रीनिवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने पर उनके मुख्य सहायक कौन थे? नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेषतया बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, और श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी कौन कौन से हैं? हमें षड गोस्वामी के नाम पता होने चाहिए। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये सब चैतन्य महाप्रभु के संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उनकी सहायता करते थे, जिन्होंने वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करने के लिए नियुक्त किया गया। अब चैतन्य महाप्रभु के जीवन का उद्देश्य था कि जन सामान्य को फिर से कृष्ण भक्ति की तरफ परिवृत्त करना, तो इसके लिए आवश्यक था कि जो उनकी लीला स्थलियां थी चैतन्य भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में, उनको फिर से खोजना। तो ये सारा कार्यभार षट गोस्वामियों ने उठाया और जो जो चीजें जो जो जगह लीला स्थले मतलब अप्रकट हो गई थी उन सबको प्रकट किया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हम आज भी भगवान श्री कृष्ण के होने को वृंदावन में ब्रज में हम महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि अभी की घटना है, हालांकि 5000 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम वृंदावन में जाते हैं तो एक एक चीज से, एक एक पत्ते से, एक एक वृक्ष से, वहां की मट्टी से हमें कृष्ण के होने का प्रभास होता है। ऐसा लगता है कि यही है कृष्ण, आज भी यही है। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने ये सारी लीला स्थलियां खोज निकलवाई। और महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के बाद तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। कहते थे कि बस अभी मुझे वृंदावन जाना है। और वे 3 दिनों तक लगातार राड़ देश में, राड़ देश कौन सा है? वो जगह जहाँ पर गंगा नदी नहीं बहती, वरना तो नवद्वीप में चारों ओर गंगा नदी है लेकिन वहां पर नहीं होती है, वहां पर राड़ देश में यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के लिए पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन नित्यानंदा ने उनका मार्ग बदल दिया और इसके विपरीत उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर में ले गए। यानी कि वो क्या कर रहे थे, वृंदावन जा रहे थे और भावावेश में थे, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला ये रास्ता नहीं है, इधर से जाना पड़ेगा वृंदावन। तो फिर वो उल्टी उल्टी तरफ से ना महाप्रभु को ले गए। अब महाप्रभु क्योंकि भावावेश में थे, वो वृंदावन में पूरा उनका मन लगा हुआ था, तो वो वापिस शांतिपुर उनको लेकर आए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे रहे। श्री अद्वैत प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता शची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवद्वीप से लेवा लाने के लिए आदमी भेजे। कुछ धूर्तों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से मिले और उन्होंने पूजा के लिए अपनी खड़ाऊ दी, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली थी और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौता के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाए जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहे। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधारी किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को अपने वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। अब क्योंकि अगर महाप्रभु वृंदावन चले जाते ना तो मायापुर से वृंदावन बहुत 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 दूर है, मतलब समाचार भी नहीं मिलता मायापुर के लोगों को चैतन्य महाप्रभु का, इतना दूर है। 500 वर्ष पहले इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो जब अद्वैत आचार्य के घर की सच्ची माता महाप्रभु से अपने बेटे से अंतिम बार मिलने आई तो महाप्रभु ने उन्हें कहा कि मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन सच्ची माता ने कहा कि नहीं बेटा, अगर तुम वृंदावन चले जाओगे फिर तो कभी तुम्हारे बारे में हमें कोई बताने वाला भी नहीं होगा। तुम ऐसा करो, जगन्नाथपुरी में रह जाओ ना, ये भी तो भगवान का घर है। अब यहाँ पर तुम रह जाओगे तो फिर, क्योंकि जगन्नाथपुरी से लोग मायापुर आते जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि आते जाते आपका समाचार मुझे मिलता रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप वृंदावन नहीं जाओ बल्कि जगन्नाथपुरी में रह जाओ। तो माता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथपुरी में शिफ्ट हो गए थे। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थान के दर्शन किए। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया जिन्होंने अपने भक्त श्री माधवेंद्रपुरी के लिए क्षीर चुराई थी। तब से गोपीनाथ जी क्षीर चोरा गोपीनाथ कहलाते। महाप्रभु को यह कथा सुनकर बड़ा आनंद आया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक भी पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी, अतएव इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई। और इस परम विचार के आधार पर कि भगवान तथा उनकी यह चौर वृत्ति एक तथा अभिन्न है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी यह पूजनीय बन गई। कृष्णदास कविराज महाराज गोस्वामी ने चैतन्य चैतामृत में गोपीनाथ जी की इस रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। एक बार जब माधवेंद्रपुरी को मदन मोहन जी की विग्रह मिली थी तो उन्होंने माधवेंद्रपुरी को कहा था कि मुझे बहुत गर्मी, क्योंकि वो विग्रह जो थी वो काफी टाइम से जमीन के अंदर दबी हुई थी। तो फिर जब वो उनको बाहर निकाला गया तो उसने कहा, माधवेंद्रपुरी के सपने में आकर ये कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप जाओ जगन्नाथपुरी से मेरे लिए चंदन लेकर आओ। माधवेंद्रपुरी जब वहां से चंदन लेने के लिए गए तो रास्ते में गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा। और गोपीनाथ जी के मंदिर की एक विशेष बात थी कि वहां पर खीर का भोग लगाया जाता था जिसे राम के लिए खीर कहा जाता था और वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो माधवेंद्रपुरी के हृदय में ये विचार आया कि मुझे यदि ये खीर खाने को मिल जाए तो मैं इसको टेस्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कैसा है इसका स्वाद, तो मैं अपने गोपाल के लिए ऐसी खीर बनाऊंगा। लेकिन जब उनके हृदय में ये ख्याल आया था उस समय अभी तक भगवान को भोग नहीं लगा था। जब माधवेंद्रपुरी को ये एहसास हुआ कि अभी तक भगवान ने खाया ही नहीं और मेरा मन इतना दुष्ट है कि भगवान से पहले भी खाने का विचार कर रहा है, तो उसको बहुत दुख हुआ। और फिर वो जगह छोड़ के शायद थोड़े पास के ही जंगल में जाकर बैठ गए और बहुत ज्यादा दुख और संताप करने लगे कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। जब पंडित ने सारी जितनी भी खीर 12 खीर के कटोरे अर्पण होते थे और सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो जब रात को उस मंदिर का पुजारी सो रहा था तो उसके सपने में गोपीनाथ जी ने आके कहा कि मेरा एक भक्त माजिंदरपुरी आया हुआ है, उसे खीर का एक प्याला दे दो। तो ब्राह्मण ने कहा कि वो तो सारी खत्म हो गई खीर। तो फिर भगवान ने कहा नहीं, एक प्याला मैंने अपने भक्त के लिए चोरी करके रखा है, आप जाके माजिंदरपुरी को ये दे दो। तो ये सुनकर पुजारी बहुत ज्यादा हैरान हुआ और देखा तो वाकई में राधा रानी के पीताम्बर की जो राधा रानी का दुपट्टा है ना, उसके पीछे वो खीर का कटोरा छुपा हुआ था। तो ये देखकर पुजारी बहुत हैरान हुआ और जाके खीर का कटोरा हाथ में लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई यहाँ पर कोई भक्त माधेन्द्रपुरी है क्या, उसके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है। तो ये सुनकर माधेन्द्रपुरी ने बोला ये मैं माधेन्द्रपुरी हूँ। तो फिर है ना ब्राह्मण ने वो खीर का कटोरा माधवेंद्रपुरी को दिया। माधवेंद्रपुरी खीर देखकर बहुत रो रहे थे और भगवान को ये प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे लिए आपने ऐसा किया। तो जो पुजारी था वो माधवेंद्रपुरी की बहुत सराहना करने लगा कि आप कितने महान भक्त हो कि भगवान ने आपको प्रसन्न करने के लिए चोर मतलब खीर चुराई। और उस दिन से उस गोपीनाथ जी का नाम खीर चोर गोपीनाथ हो गया। ये स्थान आज भी उड़ीसा में है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उड़ीसा में बालसोर स्थान रेमुणा के श्री चोर गोपीनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर देखा, जो दो ब्राह्मण भक्तों के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े ही चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्तुत मंदिरों के पूज्य अर्चा विग्रह कोरी मूर्तियां न थे, जैसा कि अज्ञानी आरोप लगाते हैं। मंदिर का विग्रह भगवान का अर्चा अवतार होता है, अतएव विग्रह सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होता है। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही अनुक्रिया दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में दो भगवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई थी, तो भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष दया दिखाने के लिए वृंदावन से उड़ीसा स्थान स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की थी। वहां से यह विग्रह कटक लाया गया, इसलिए आज भी हजारों तीर्थ यात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु से उनका संन्यास डंडा टूट गया, अतः महाप्रभु उन पर बनावटी ढंग से कुपित हुए और अपने सारे संगियों को छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। तो यहाँ पर एक साक्षी गोपाल का भी मंदिर है। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण था तो उसको वृंदावन की यात्रा करनी थी, लेकिन उसके सारे उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि मुझे वृंदावन की यात्रा कराओ, लेकिन उसके सारे पुत्रों ने कहा कि पिताजी हम बहुत व्यस्त हैं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। अब वो ब्राह्मण थोड़ा बुरा था, वो अकेले जा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो जाना चाह रहा था। तो अभी फिर वो चला गया अपने बेटों को छोड़ के, और रास्ते में उसको एक मतलब यंग ब्राह्मण मिला और उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। तो फिर उस ब्राह्मण ने कहा छोटे वाले ने कि ठीक है, मैं आपको वृंदावन की यात्रा कराऊंगा। और उन्होंने बड़े प्रेम से उस वृद्ध ब्राह्मण को यात्रा कराई और एक एक मंदिर के दर्शन कराए और बहुत उनकी सहायता की, बहुत उनकी है ना सेवा की। और जब उसकी सेवा से प्रसन्न होने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि मेरी बेटी है, मैं आपका विवाह उसके साथ करूंगा। तो फिर जो छोटे वाले ब्राह्मण थे ना यंग वाले, उसने कहा कि अच्छा आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करोगे, लेकिन मैं तो मतलब इसका कोई साक्षी नहीं है, कैसा हो सकता है वहां पर जाके आप मना कर दो। तो फिर ना बोला नहीं, ये जो भगवान की मूर्ति थी, एक गोपाल नाम के एक भगवान थे, उनकी मूर्ति के सामने, बोला मैं इस भगवान के सामने आपको ये वचन देता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करूंगा। तो ये सारी घटना कंप्लीट करने के बाद, पूरा यात्रा करने के बाद, जब ब्राह्मण फिर से अपने घर में गया और अपने बेटों को कहा कि मुझे जिस ब्राह्मण ने यात्रा करवाई है, मैंने उसको ये वचन दिया है कि अपनी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करवाऊंगा, तो उसके बेटों ने बोला पिताजी दिमाग खराब हो गया आपका, जानते नहीं है उसको, पता नहीं क्या खाता है क्या कमाता है, कौन है कौन सी कैसा है, और आप उससे हमारी बहन का विवाह करोगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर ना उसने बोला चलो अभी क्या कर सकते हैं, सारे बेटे उसके खिलाफ हो रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण आ गया और उनसे कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि अपने पुत्री का विवाह मेरे साथ करोगे, तो अब मैं आया हूँ। तो वो ब्राह्मण यदि यदि भी चाहता था कि मैं उससे शादी कराऊं, लेकिन क्योंकि अब उसके बेटे नहीं मान रहे थे, तो उसने बोला कि मैंने कब बोला, और उसके बेटों ने भी बोला आप आपको आपके पास क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि मेरे पिताजी ने आपको ऐसा वचन दिया था। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि भगवान की मूर्ति के सामने कहा था। तो फिर उनके बेटों ने कहा अगर भगवान साक्षी है तो लेकर आओ उन भगवान को। फिर वो ब्राह्मण फिर से वृंदावन गए और साक्षी गोपाल जो जो के नाम से जो आज एक ग्रह विख्यात है, उनको जाके कहा कि आपके सामने उन्होंने मुझे वचन दिया था, अब क्योंकि आपके आप साक्षी हो, आप प्रमाण हो, अब क्योंकि मेरी आन की बात है, मुझे झूठा कहा जा रहा है, तो आपको आना पड़ेगा मेरे साथ साक्षी देने के लिए, गवाही देने के लिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, लेकिन देखो तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं तुम्हारे साथ साथ आ रहा हूँ, लेकिन तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं चलूंगा। तो फिर उस ब्राह्मण ने प्रॉमिस किया भगवान को कि ठीक है मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा आप, लेकिन ऐसा नहीं आप रुक नहीं जाना, आप चलते रहना। तो बोला ठीक है। तो भगवान की ये विग्रह वृंदावन से उड़ीसा तक, यानी कितना दूर का फासला दे करके वहां विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा विग्रह अवतार के रूप में आती रही। लेकिन जब विद्यानगर में पहुंचे तो क्योंकि पहले जब भगवान आ रहे थे तो उनके चरणों से झांझर की छोटी छोटी आवाज आ रही थी, मध्यम मध्यम छम छम छम, लेकिन जब विद्यानगर में पहुंचे तो आवाज आना बंद हो गई। फिर अब वो आगे जा रहा था, भ्रमण आगे जा रहा था, उसको लगा कि कहीं मैं उधर चला जाऊंगा और भगवान नहीं होंगे पीछे तो मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। तो फिर ना उसने आवाज जब आना बंद हो गई तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान थे, लेकिन वहां पर भगवान फिर से मूर्ति बन के खड़े हो गए। और भगवान ने याद कराया कि मैंने तुम्हें बोला था ना पीछे नहीं देखना, अभी तुमने पीछे देखा है, अभी मैं आगे नहीं चलूंगा। तो फिर ना उसको इतना दुख हुआ कि मैं अब क्या करूं, लेकिन क्योंकि गांव में तो पहुंच गए थे और फिर सारे उसके बेटों को लाके दिखाया, बोला ये रहे भगवान यहाँ तक आए हैं, लेकिन तुम लोग क्योंकि भगवान के सामने बात कही हुई बात को भी मानते नहीं हो, इसलिए आप लोगों के घरों मतलब आप लोग के पास आप नहीं आना चाह रहे थे भगवान, इधर ही रुक गए, लेकिन यहाँ तक भगवान चल के आए साक्षी देने के लिए, अब यहाँ पर आ गए तो आप लोगों को मानना चाहिए। ये देखकर सब इतना हैरान हो गए कि भगवान की मूर्ति कैसे वृंदावन से यहाँ तक आई है, बहुत सबको हैरत हुई, बहुत आश्चर्य हुआ। वास्तव में भक्तों ये चैतन्य महाप्रभु इस लीला के जरिए हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये भगवान की मूर्ति जो होती है ना, जो हमारे मंदिर में होती है, वो केवल मूर्ति नहीं होती है, ये भगवान का साक्षात अर्चा विग्रह अवतार होता है। ये हमारी बात सुनती है, हमारे हृदय की प्रार्थनाओं को सुनती है, हमारे भाव को महसूस करती है, हमारे दिए हुए प्रसाद को स्वीकार करती है, हमारी सेवाओं को स्वीकार करती है, हमें आशीर्वाद देती है, लेकिन ये तब जब हम उन्हें भगवान समझते हैं। भगवान कहते हैं 4.11 में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव वचामि हम, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी भाव से उसको दर्शन देता हूँ। यदि हम भगवान के जो हमारे मंदिर में भगवान है उनको हम यदि पत्थर की मूर्ति समझेंगे तो वो वैसा ही व्यवहार करेंगे, और यदि हम उन्हें भगवान मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, और तो फिर वो भी हमें उसी तरह से हमें फल देंगी, हमारे साथ वही व्यवहार करेंगी। हम यदि भगवान से प्रेम का संबंध जोड़ेंगे तो भगवान भी हमसे प्रेम का संबंध जोड़ेंगे और ये संबंध अटूट बन कर रह जाएगा। लेकिन यदि हम भगवान को भगवान न समझ कर केवल विक्रय समझेंगे तो भगवान भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो हमें चाहिए कि भगवान की जो मूर्ति है, जो विग्रह जिसकी प्राण प्रतीक्षा होती है मंदिरों में होती, उसको साक्षात भगवान समझ कर प्रणाम करें और ताकि वो भी हमें वैसे ही आशीर्वाद दें। तो इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर साक्षी गोपाल के मंदिर में दर्शन किए और महाप्रभु ने आगे यात्रा स्टार्ट की। अब उनको पूरी जाना था, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जो है ना, उनसे उनका संन्यास दंड टूट गया। कैसा हुआ कि संन्यास दंड जो था वो उन्होंने स्वरूप दामोदर को दिया। महाप्रभु को बोला मैं नहा के आता हूँ। अब वो स्नान करने के लिए गए तो डंडा नित्यानंद प्रभु ने देखा कि ये डंडा, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से इतना प्रेम करते, तो सन्यासी जो होता है वो हमेशा अपने डंडा अपने साथ रखता है। तो उस डंडे को देखकर नित्यानंद प्रभु को बोला ये डंडा इतना, इसका इतना भाग्य कि सदैव महाप्रभु से चिमटा रहता है। मतलब थोड़ी सी ईर्ष्या, मतलब भक्त क्या होता है, उसको लगता है कि मैं खाली भगवान के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊं। तो फिर बस नित्यानंद प्रभु को ने ऐसे ही उस डंडे को ऐसे उठाया। अब नित्यानंद प्रभु वो तो है ना अवधूत श्रोमणि, उन्होंने जैसे उठाया और ऐसे थोड़ा डंडे को इधर उधर देखा, स्वरूप दामोदर ने बोला नहीं महाप्रभु ने मुझे संभालने के लिए दिया, मैं आपको नहीं देना, मैं देख रहा हूँ खाली, दिखाओ तो सही। तो नित्यानंद प्रभु के हाथ से वो डंडा टूट गया। अब टूट गया तो फिर है ना, अब वो डर गए कि अभी महाप्रभु आएंगे मुझे डांटेंगे, तो उन्होंने ऐसे ही सही करके रख देते ना, जैसे बच्चे तोड़ देते फिर सही करके रख दिया। जब महाप्रभु ने उठाया तो तीन टुकड़े पड़े हुए थे उसके, तो महाप्रभु ने बहुत बहुत गुस्सा किया, बोले तुम ना कभी, मेरा संन्यास धर्म है और मुझे संन्यास आश्रम में डंडा जो है ना, वो डंडा सन्यासी होता है ना, वो जरूर उठाना होता है, तो बोला तुमने इसको तोड़ दिया। अभी बहुत गुस्सा किया और बोला अब मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा ही नहीं, तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं अपने नियमों का सही सही पालन कर सकूं। और नित्यानंद प्रभु से कुपित हुए और सारे सन्यासियों को छोड़कर अकेले फिर चैतन्य महाप्रभु अकेले पूरी जाने लगे और पीछे सब गया, बोला मेरे साथ कोई नहीं आया, बस तुम लोग मेरे साथ ऐसा करते हो, अभी मैं किसके साथ भी नहीं जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा। और फिर वो अकेले पूरी मंदिर में गए और जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर उनके साथ क्या हुआ, कैसा दिव्य आनंद प्राप्त हुआ, कैसे दिव्य आनंद की अनुभूतियां हुई, वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।